दिन भर तारीख 30 जनवरी दिन बुधवार, मैं हूँ मानसी राज। अमरीकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट, परमाणु कार्यक्रम नहीं रोक रहा उत्तर कोरिया।
We currently assess that North Korea will seek to retain its WMD capabilities and is unlikely to completely give up its nuclear weapons.
लोकपाल के मुद्दे को लेकर एक बार फिर शुरू हुआ अन्ना का अनशन।
मैं तो बोलता कि ये पंत प्रधान है ना, इनका नाम ऐसे रखना पड़ेगा, आश्वासनाबाद पंत प्रधान, आश्वासन देने वाला, ऐसा मुझे लगता है।
और दुनिया जहान में आज पड़ताल वेनेजुएला के राजनीतिक संकट की।
एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम बहुत है, फूड नहीं मिल रहा है, वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूसर है मगर रिफाइंड प्रोडक्ट।
होंगी खबरें और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार भूमिका राय से। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर सवाल उठाए हैं कि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। पिछले साल जून में जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन की मुलाकात हुई थी तो उनके बीच ये तय हुआ था कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से बंद कर देगा। उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थल को नष्ट करने का वीडियो भी जारी किया था, लेकिन अब अमरीकी खुफिया विभाग की एक रिपोर्ट में उत्तर कोरिया के अपने इस वायदे को पूरा करने पर शंका जाहिर की गई है। यमन में मौजूदा संयुक्त राष्ट्र के विशेष दल का कहना है कि होदेदाह में लागू हुआ युद्ध विराम अभी भी जारी है, हालांकि इस बीच कई बार गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिली हैं। विशेष दल के साथ यमन में मौजूद संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ ने इस संबंध में बीबीसी से कहा कि पिछले महीने से अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से हवाई हमला नहीं किया गया है। उन्होंने माना कि अभी भी तस्वीर पूरी तरह से साफ भले ही न हो, लेकिन सुधार हो रहे हैं। मार्टिन ग्रिफिथ ने कहा,
The ceasefire today is holding at about the same level it did when it began on December the 18th.
पिछले साल 18 दिसंबर को जब युद्ध विराम की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से आज तक हालात काबू में बने हुए हैं। मैं खुलकर बताऊं कि अगर मैं होदेदाह में रह रहा हूं, तो मुझे मालूम रहता है कि वहां के हालात कितने नाजुक हैं। इसके बावजूद मैं कह सकता हूं कि इस इलाके के हालात में कुछ सुधार तो ज़रूर हुआ है। युद्ध विराम के बाद से किसी तरह की सैन्य कार्रवाई नहीं हुई है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मार्टिन ग्रिफिथ के शब्द। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ किया है कि वे देश में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि भले ही वेनेजुएला में राजनीतिक संकट बरकरार हो, लेकिन वे अपने पद से नहीं हटेंगे। रूसी मीडिया से बात करते हुए मादुरो ने कहा कि अगर अमेरिका और बाकी देश ये समझते हैं कि वेनेजुएला में नए सिरे से राष्ट्रपति चुनाव होंगे, तो उन्हें 2025 तक मेरे कार्यकाल के समाप्त होने का इंतजार करना होगा। उन्होंने बताया कि उन्हें रूस की तरफ से समर्थन मिल रहा है। निकोलस मादुरो ने कहा, हमें हर स्तर पर रूस का पूरा सहयोग मिल रहा है और हम उनके बहुत आभारी हैं। मैंने राष्ट्रपति पुतिन से सिर्फ इतना ही कहा है कि वे लगातार मेरे संपर्क में रहें। ये थे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने बताया है कि पिछले साल भूमध्य सागर से यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों में से औसतन 6 लोगों की मौत प्रतिदिन हुई थी। एजेंसी ने इस समुद्री सीमा पार करने के दौरान होने वाली मौतों का सबसे बुरा आंकड़ा बताया है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भूमध्य सागर के रास्ते पर मौजूद खतरों और विशेषकर लीबिया के रास्ते को बहुत ही खतरनाक माना है। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि बीते शुक्रवार को ब्राज़ील में एक बांध के टूटने की घटना की जांच की जाएगी। इस दुर्घटना में दर्जनों लोग मारे गए थे, इसके अलावा करीब 300 लोग लापता बताए जा रहे हैं। दरअसल बांध के नज़दीक ही एक लोहे की खदान थी जिसका कचरा बांध में चला गया था, जिस वजह से ये दुर्घटना हुई। बीते 3 साल में ब्राज़ील में खदान के चलते होने वाली ये दूसरी दुर्घटना है। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के एक करीबी शख्स किम क्योंग सू को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। उन पर राष्ट्रपति चुनावों से पहले ऑनलाइन समाचारों में हेराफेरी करने के आरोप लगे हैं। किम क्योंग सू दक्षिणी योंग सैंग प्रांत के गवर्नर हैं। वे चुनाव से पहले एक ब्लॉगर के साथ मिलकर काम कर रहे थे। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की दूसरी सभा दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को मानसी दास का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन सकते हैं। बारह जून 2018 इस दिन दुनिया के दो बड़े नेताओं उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन और अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। उम्मीद बढ़ी कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाएगा और उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु परीक्षण स्थल को दुनिया भर की मीडिया के सामने नष्ट करके ये दिखा भी दिया कि वो अपने वादे का पक्का है। लेकिन अब अमरीकी खुफिया विभाग ने एक रिपोर्ट में कहा है कि ऐसा नहीं लगता कि उत्तर कोरिया अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह रोक लगाएगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ईरान फिलहाल परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन रूस और चीन के कारण इसका खतरा बढ़ रहा है। बीबीसी संवाददाताओं के भेजे ब्यौरे का सार सुनिए कमलेश मठेनी से।
अमरीकी खुफिया विभाग ने द वर्ल्ड वाइड थ्रेट असेसमेंट नाम से एक रिपोर्ट जारी की है, जिसके अनुसार अमरीका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए प्रतिबंधों में रियायत पाने के लिए उत्तर कोरिया आंशिक तौर पर परमाणु निरस्त्रीकरण की बात कर रहा है और कदम भी उठा रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि वो अपने पास मौजूद परमाणु हथियार नष्ट करेगा और अपने परमाणु कार्यक्रम पर पूर्ण विराम लगाएगा। राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स मंगलवार को सीनेट की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश हुए। उन्होंने कहा,
किम जोंग उन कंटिन्यूज टू डेमोंस्ट्रेट ओपननेस टू द डीन्यूक्लियराइजेशन ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। हैविंग सेड दैट,
किम जोंग उन लगातार ये बता रहे हैं कि कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु मुक्त करने की उनकी प्रबल इच्छा है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक उत्तर कोरिया महाविनाशकारी हथियारों को रखना चाहेगा। वो पूरी तरह अपना परमाणु कार्यक्रम और हथियार बनाने का सिलसिला जारी रखना चाहेगा, क्योंकि इसके नेताओं को लगता है कि देश को बचाने के लिए परमाणु हथियारों का होना बेहद महत्वपूर्ण है।
Weapons as critical to regime survival.
लेकिन राष्ट्रीय खुफिया विभाग के निदेशक डैन कोट्स का ये बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन बयानों के विपरीत है जिनमें उन्होंने कहा था कि दोनों नेताओं के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं और परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच बातचीत भी सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ रही है। बीते साल सितंबर में अमरीका के वेस्ट वर्जीनिया में हुई एक रैली में ट्रंप ने कहा था,
We are doing great. That was a big, big problem. And you know the interesting, when I did it and I was really being tough and so was he and we were going back and forth and then we fell in love.
हमारे रिश्ते काफी बेहतर हुए हैं, एक बहुत बड़ी समस्या थी, लेकिन एक दिलचस्प बात ये है कि जब हमने बातचीत शुरू की तो मैंने कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने भी ऐसा किया, लेकिन बाद में हमारे संबंध बेहतर हुए। किम जोंग उन ने मुझे खूबसूरत चिट्ठियां लिखी और हमारे रिश्ते और भी बेहतर हुए हैं।
No, really. He wrote me beautiful letters and they're great letters. We fell in love.
इसी महीने की 20 तारीख को ट्रंप ने ट्वीट कर कहा कि उत्तर कोरिया के साथ हमारे प्रतिनिधियों के बीच बातचीत बेहतर तरीके से चल रही है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि फरवरी के आखिर में किम जोंग उन से उनकी एक बार फिर मुलाकात हो सकती है, लेकिन अब तक ये नहीं बताया गया है कि मुलाकात की तारीख और जगह क्या होगी। उत्तर कोरिया शुरू से एक तरफा ही ये कहता आया है कि अपने परमाणु कार्यक्रम पर लगाम लगाएगा, लेकिन उसने ये भी कहा है कि वो पूरी तरह परमाणु निरस्त्रीकरण तब तक नहीं करेगा जब तक अमेरिका भी ऐसा नहीं करता।
रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश मठेनी।
खबर सच है
अगर बीबीसी पर है।
रुक करते हैं भारत का। बीते कई सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल कानून की मांग कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे एक बार फिर इसको लागू करने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। महाराष्ट्र के रालेगान सिद्धी गांव में मंदिर में सवेरे की प्रार्थना के बाद उन्होंने अपनी हड़ताल शुरू कर दी। साल 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए लोकपाल की मांग को लेकर लंबी भूख हड़ताल की थी, जिसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार ने ये कानून भी बनाया था। अब से थोड़ी देर पहले मैंने बात की बीबीसी मराठी सेवा के हमारे सहयोगी अभिजीत कांबले से और उनसे पूछा कि क्या वजह है कि करीब 80 साल के अन्ना हजारे एक बार फिर अनशन पर हैं।
जी, जैसे कि हम जानते हैं कि अन्ना हजारे ने एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में खड़ा किया था। उस वक्त यूपीए की सरकार थी और उनका जो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि देश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए लोकपाल की नियुक्ति की जाए। आंदोलन बड़ा होने के बाद सरकार को इसके ऊपर कुछ कदम उठाने पड़े थे और पार्लियामेंट में उस वक्त ये कानून पास किया गया कि देश में एक मजबूत लोकपाल नियुक्त किया जाएगा। इसके बाद आज भी आंदोलन अन्ना को इसी को लेकर करना पड़ रहा है। इसकी वजह है कि लोकपाल का कानून तो पारित हुआ है, लेकिन लोकपाल अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। 2014 में एनडीए की सरकार आई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसके बाद आज तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई है।
आज अनशन शुरू करते वक्त रालेगान सिद्धि में अन्ना ने क्या कुछ कहा?
जी, आज सुबह उन्होंने 11 बजे अपना अनशन रालेगान सिद्धि, जो उनका गांव है, वहां से शुरू किया है। उसके बाद उन्होंने भाषण दिया और कुछ मीडिया के लोगों से जो बात की उसमें उन्होंने कहा है कि मेरी जो दो मांगे हैं उसमें प्रमुख मांग है एक तो लोकपाल और लोकायुक्त को लेकर, और दूसरी है किसानों के स्वामीनाथन कमीशन के जो लाभ है वो मिलने को लेकर।
मुझे तो कभी कभी प्रश्न निर्माण हो जाता है कि पंत प्रधान और उनके लोगों ने जो आश्वासन दिए जनता को, उनको भी याद है नहीं पता नहीं, इतना आश्वासन दिए और अभी पालन नहीं कर रहे, तो इतने आश्वासन दिए। मैं तो बोलता कि ये पंत प्रधान है ना, इनका नाम ऐसे रखना पड़ेगा, आश्वासना बाद पंत प्रधान, आश्वासन देने वाला, ऐसा मुझे लगता है।
अब इसमें जो लोकपाल वाली मांग है उसपे उन्होंने कहा है कि तुरंत इसके ऊपर केंद्र सरकार को कदम उठानी चाहिए। लोकायुक्त जो महाराष्ट्र से जुड़ी हुई चीज है उसमें अब तक मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में नहीं था। अन्ना की ये प्रमुख मांग थी कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री लोकायुक्त के दायरे में आना चाहिए। अन्ना का अनशन शुरू होने के एक दिन पहले महाराष्ट्र के कैबिनेट ने यह डिसीजन लिया कि लोकायुक्त के दायरे में मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब अन्ना का उसके ऊपर ये कहना है कि ये जो निर्णय कैबिनेट ने लिया है ये विधानसभा में कानून के रूप में पारित होना चाहिए।
जी, कैबिनेट फैसले को कानूनी शक्ल दी जानी जरूरी है, ये मांग है अन्ना की।
जी बिल्कुल, उन्होंने पुरजोर मांग की है कि कैबिनेट ने भले ही ये फैसला लिया हो लेकिन जब तक कानून के रूप में ये सामने नहीं आता तब तक ये प्रभावशाली नहीं हो सकता।
आपको याद होगा दिल्ली में जब रामलीला मैदान में अन्ना ने अपनी हड़ताल शुरू की थी उस वक्त अरविंद केजरीवाल उनके साथ नजर आए थे, जो आज आम आदमी पार्टी के संयोजक है। क्या आज जो अनशन शुरू किया है अन्ना ने उसमें अरविंद केजरीवाल के आने की कोई खबर है?
जिन्हें हम पिछले दो आंदोलन देखे अगर, तब से इनमें से कोई भी अन्ना के साथ में दिखाई नहीं दिया है। आज का जो आंदोलन शुरू हुआ है रालेगान सिद्धि में उसमें भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई इनके साथ में दिखाई नहीं दिया है। जी, अन्ना का इसके बारे में ये कहना है कि ये सब लोग लोकपाल को लेके मेरे साथ आए थे, आज भी लोकपाल नियुक्त नहीं हुआ लेकिन ये लोग उसके बारे में आजकल बात भी नहीं कर रहे और मेरे साथ भी नहीं है।
अरे उनको तो लोकपाल और लोकायुक्त याद ही नहीं, वो भी भूल गए, जैसे नरेंद्र मोदी भूल गए ऐसे ये भी भूल गए। ये क्या खुर्चे का गुणधर्म है क्या पता नहीं, चेयर में बैठने के बाद भूल जाते।
जानकारी के लिए धन्यवाद अभिजीत कांबले। पूर्वोत्तर राज्यों में नागरिकता संशोधन बिल 2016 को लेकर हो रहे विरोध ने भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मंगलवार को जिन 11 राजनीतिक दलों ने इस बिल का संयुक्त रूप से विरोध करने का प्रस्ताव लिया है वो सभी बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं। बीजेपी ने जिन क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर पूर्वोत्तर फतह करने के लिए नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस यानी नेडा का गठन किया था अब उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। क्या पूर्वोत्तर राज्यों में कथित हिंदुत्व का एजेंडा बीजेपी को वापस उस खराब दौर में ले जाएगा? गुवाहाटी से हमारे सहयोगी दिलीप कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
साल 2016 की 24 मई का दिन, जगह असम के गुवाहाटी का खानापाड़ा मैदान। मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत उनके कैबिनेट के सभी शीर्ष मंत्री मौजूद थे। साथ ही मौजूद थे बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह। पूर्वोत्तर राज्यों में किसी भी सभा में एक साथ बीजेपी के इतने नेता कभी शामिल नहीं हुए। दरअसल ये कार्यक्रम असम में पहली बार सत्ता में आई बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल का शपथ ग्रहण समारोह था। बीजेपी ने अपने एक मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को इतने बड़े समारोह का रूप देकर उस समय एक तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में सालों से राज कर रही कांग्रेस को साफ संदेश दे दिया था कि अब इस क्षेत्र में उसको कोई नहीं रोक सकता। ऐसा हुआ भी, पूर्वोत्तर में कांग्रेस के हाथ से एक के बाद एक सभी राज्य निकलते चले गए। दरअसल देश के इस हिस्से में ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने असम और पूर्वोत्तर के लोगों से शुरू में केवल विकास की बात की थी।
हिंदुस्तान का पूर्वी छोर ये अगर विकास से वंचित रहेगा तो ये हमारी भारत माता समृद्ध नहीं हो सकती है। अगर भारत का पश्चिमी छोर ये आगे बढ़ता है तो भारत का पूर्वी छोर भी उतनी ही गति से आगे बढ़ना चाहिए।
लेकिन असम में सरकार बनने के महज ढाई साल के भीतर यानी 2019 आते आते माहौल ऐसा बन गया कि अब वही लोग बीजेपी नेताओं को काला झंडा दिखाने लगे हैं। जानकार इसका एक बड़ा कारण बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे को बता रहे हैं। मेघालय की वरिष्ठ पत्रकार तथा दी सिलोंग टाइम्स की संपादक पेट्रिसिया मुखिम ने बीबीसी से कहा,
उनका ये जो हिंदुत्व एजेंडा ना, उसको वो एकदम इट हैज सरपास्ड द डेवलपमेंट एजेंडा। लेकिन चलते चलते मतलब ये डेवलपमेंट तो पीछे हट गया और ये हिंदुत्व का एजेंडा तो बहुत आगे निकल गया। ये जो बिल है, दिस इज दिस, यू नो वी आर अ सेक्युलर कंट्री, यू मे से व्हाट यू मे से, हम लोग तो सेक्युलर कंट्री है और आप कैसे लाएंगे सिटीजंस ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, मेरे ख्याल में से तो बहुत नुकसान होगा।
हालांकि बीजेपी को इतनी मजबूत स्थिति में पहुंचाने वाले पार्टी नेता इतने बड़े विरोध के बाद भी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। असम प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गुप्ता कहते हैं,
देखिए ऐसा है, ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दे पे नहीं है ये गलत है। जहां तक नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी की बात है कि गुवाहाटी एयरपोर्ट पे वहां पे सिर्फ 12 प्लेन आया करते थे और आज के अंदर में 256 प्लेने आती है।
तो फिर अब आज क्यों इस तरह से लोग विरोध में आने लग गए हैं? अब
देखिए स्वाभाविक रूप से हम डेवलपमेंट कर रहे हैं तो विरोधियों को बड़ी तिलमिलाहट हो रही है।
नागरिकता संशोधन बिल को लेकर भले ही असम में कांग्रेस कड़ा विरोध कर रही है, लेकिन राज्यसभा में कांग्रेस की असली परीक्षा होनी अभी बाकी है, क्योंकि अगर कांग्रेस के सदस्य ऊपरी सदन में बिल का विरोध करते हैं तभी इसे रोका जा सकेगा। पार्टी की स्थिति साफ करते हुए असम प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अपूर्व भट्टाचार्य कहते हैं,
ये राज्यसभा में हम पास होने नहीं देंगे। और दूसरा बात है कि भाजपा ये समझ गया कि जिस टाइम भाजपा जनता से काफी दूर है।
पूर्वोत्तर राज्यों में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं, जबकि असम में सबसे ज्यादा 14 सीटें हैं। लेकिन देश के इस हिस्से में बीजेपी के लिए आने वाला लोकसभा चुनाव महंगा साबित हो सकता है। दिलीप कुमार शर्मा, बीबीसी, गुवाहाटी।
दक्षिण अफ्रीका के डरबन में मोहनदास करमचंद गांधी ने साल 1904 में अपने पहले आश्रम की स्थापना की थी। नाम था फीनिक्स आश्रम। इस आश्रम को उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है, जहां वो एक वकील से अहिंसा पसंद मानवाधिकार कार्यकर्ता बने। इस आश्रम के नाम के बारे में एक बार उन्होंने कहा था कि फीनिक्स एक काल्पनिक चिड़िया का नाम है जो मरने के बाद अपनी राख से फिर जिंदा हो जाती है। इसी तरह अलग धर्म और अलग वर्ण के लोगों को साथ में लाने के उद्देश्य से बने फीनिक्स आश्रम का उद्देश्य हमारे मरने के बाद भी रहना चाहिए। महात्मा गांधी की पोती इला गांधी, जिनका जन्म इसी आश्रम में हुआ था और वो अब भी वहीं रहती हैं, उनसे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में बात की बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद ने। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सुनिए उनकी खास रिपोर्ट।
फीनिक्स आश्रम, महात्मा गांधी ने इसे 1904 में बनाया था और पत्नी कस्तूरबा के साथ वो कई साल यहाँ रहे। उनकी पोती इला गांधी का जन्म यहीं हुआ।
That status consciousness that he
वो यहाँ ये सोचकर आए थे कि वकील होने के नाते उनका दर्जा ऊंचा होगा, लेकिन यहाँ उन्हें एहसास होने लगा कि आप चाहे वकील हो या झाड़ू लगाने वाले, आप अगर गरिमा और स्वाभिमान से काम करें तो सभी के काम की इज्जत होनी चाहिए।
And you do your work with dignity and with self-respect.
भारत में महात्मा गांधी की बढ़ती आलोचना और उनकी सीख को नजरअंदाज करने पर भी वो मायूस नहीं है।
The others can say, oh, he was a racist.
कुछ लोग कह सकते हैं कि वो नस्लवादी थे, इसलिए मैं उन्हें पसंद नहीं करता। लेकिन अगर वो गांधी जी के सिखाए रास्ते पर चल रहा है, फिर वो गांधी जी को पसंद करे या ना करे, मेरे लिए वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो एक अच्छे मनुष्य की तरह जी रहा है।
गांधी की सोच में परिवर्तन लाने में उनकी पत्नी कस्तूरबा का भी हाथ था।
जब आप बा के जीवन को देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो खुद बहुत दृढ़ थी। उन्होंने गांधी जी से बहुत कुछ सीखा।
ये कम ही लोगों को पता होगा कि गांधी पर्यावरण की अहमियत को इसी आश्रम में रहकर समझे थे।
हम आज पर्यावरण के बारे में बात करते हैं, लेकिन गांधी जी ने फीनिक्स से पर्यावरण की देखभाल का काम शुरू कर दिया था। उन्होंने अपनी पुस्तक में इसके बारे में लिखा है कि उन्होंने पानी और पृथ्वी का संरक्षण कैसे किया, उन्होंने कैसे अच्छी आदतों का अभ्यास किया ताकि यहाँ गंदगी ना हो, मक्खियाँ ना आए और बदबू ना फैले।
महात्मा गांधी की पोती इला गांधी से बात कर रहे थे बीबीसी संवाददाता जुबैर अहमद। और अब वक्त है साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान का। बीते कई सालों से गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के सामने अब एक विकट राजनीतिक संकट है। विपक्षी नेता खुआन गुइदो ने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अवैध बताकर खुद को अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। इसके साथ ही देश के भीतर हिंसा भी शुरू हो गई है और दुनिया के कई देश दो खेमों में बंट गए हैं। लेकिन वेनेजुएला का आर्थिक और राजनीतिक संकट आखिर है क्यों और इसमें अमेरिका की क्या दिलचस्पी है? दुनिया जहान में बीबीसी संवाददाता संदीप सोनी ने इसी की पड़ताल की है।
दुनिया जहान।
वेनेजुएला की राजधानी काराकस में विपक्ष के नेता खुआन गुआइडो को सुनने के लिए उनके समर्थक जुटे हैं। समर्थकों की नारेबाजी से उत्साहित खुआन गुआइडो सेना से अपने लिए समर्थन मांगते हैं।
भाइयों, संविधान के साथ खड़े होने का वक्त आ गया है। वक्त आ गया है जब आपको वेनेजुएला के लोगों के सम्मान के लिए खड़ा होना है।
उनके निशाने पर है निकोलस मादुरो।
Creo que en el mundo no queda duda que es el propio Donald Trump que quiere imponer un gobierno de facto.
मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं, लेकिन विपक्षी गुआइडो ने खुद को देश का अंतरिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया है। झगड़ा क्या है? बता रहे हैं वेनेजुएला में भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई।
बेसिकली ये दिक्कत है प्रेसिडेंसी और नेशनल असेंबली के बीच में है। कांग्रेस बोलते हैं ना, कांग्रेस वो अपोजिशन कंट्रोल करती है। इनको बाईपास करने के लिए मदुरो ने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूट किया था। वो सब लेजिस्लेटिव पावर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को देना चाहते थे और वो नेशनल असेंबली को पैरालाइज करना चाहते थे। तो इसमें से ये झगड़ा हुआ रहा है। कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं जो गुआइडो, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो अभी इंटरिम प्रेसिडेंट है और मदुरो इलीगल प्रेसिडेंट है क्योंकि इलेक्शन में बहुत रिगिंग हुआ था।
चुनाव में धांधली के आरोप के अलावा वेनेजुएला में और क्या हुआ जिससे गुआइडो को मादुरो को घेरने का मौका मिला?
एक तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स बहुत है, वहाँ फूड नहीं मिल रहा है, स्टोर्स एम्प्टी हैं। वेनेजुएला ऑयल प्रोड्यूसर है मगर रिफाइंड प्रोडक्ट अभी इंपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के सपोर्ट के साथ ये नेशनल असेंबली के कांग्रेस के प्रेसिडेंट ने ये मूव लिया है क्योंकि जैसे उन्होंने डिक्लेयर किया कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड स्टेट्स रिकग्नाइज देम इमीडिएटली। जो इनका आर्थिक प्रॉब्लम है, इसका एडवांटेज या उनके अपॉर्चुनिटी लेकर ये रेजिम चेंज का मामला है।
गुआइडो को अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका से मान्यता मिलने के बाद मादुरो को लगा कि बात बहुत आगे बढ़ गई है। उन्होंने अमेरिका से अपने सभी राजनयिकों और कर्मचारियों को वापस बुलाने का फैसला किया।
इसमें कोई संदेह नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी पिट्ठू और असंवैधानिक सरकार वेनेजुएला पर लादना चाहते हैं। ट्रंप वेनेजुएला के लोगों और लोकतंत्र के खिलाफ बगावत चाहते हैं। ट्रंप खुद को लैटिन अमरीकी और कैरेबियाई देशों का बॉस समझते हैं।
वेनेजुएला में अमरीका की इस भूमिका को भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई सही नहीं मानते।
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्रैक्टिस आप ये नहीं कह सकते कोई भी आदमी डिक्लेयर कर ले कि मैं इंटरिम प्रेसिडेंट हूँ, आप उनको रिकग्नाइज कर दें। एक बार सोचिए, आप अमेरिका में प्रॉब्लम हो गया और जो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव स्पीकर है नैंसी पेलोसी, वो बोलती है मैं इंटरिम प्रेसिडेंट हूँ, ट्रंप प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो अमेरिका एक्सेप्ट करेगा? ये तो बिल्कुल गलत बात है।
लेकिन इस तथ्य को भी नहीं झुठलाया जा सकता कि वेनेजुएला आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में महंगाई आसमान छू रही है और लोग रोजमर्रा की जरूरत की चीजों के लिए तरस रहे हैं। हर दिन मुश्किल होती जिंदगी को आसान बनाने की उम्मीद के साथ लाखों लोग वेनेजुएला से पलायन कर गए हैं। वेनेजुएला में अमेरिका के पूर्व राजदूत चार्ल्स शैपिरो सेना की भूमिका को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं।
मुझे लगता है कि मादुरो को जब तक सेना का समर्थन हासिल है तब तक वो आसानी से सत्ता नहीं छोड़ेंगे। एक दशक में काफी कुछ बदल गया है। सेना और पुलिस को अब नागरिकों पर गोली चलाने में संकोच नहीं होता। हालिया प्रदर्शनों के दौरान सेना की कार्रवाई से ये साबित हो गया है।
राष्ट्रपति मादुरो के तेवर देखकर अमेरिका बौखला गया है। जानकार मानते हैं कि वेनेजुएला में असल खेल तो तेल का है। पृथ्वी पर तेल का सबसे अधिक सुरक्षित भंडार वेनेजुएला की जमीन के नीचे है, लेकिन आर्थिक बदहाली उसे तेल निकालने से रोक रही है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान वेनेजुएला को हो रहा है। संकट जारी रहा तो बाकी दुनिया इसकी जद में आने से बच नहीं पाएगी। भारत के पूर्व राजदूत निरंजन देसाई।
अभी तो हम काफी ऑयल ले रहे हैं वेनेजुएला से। हमने आई थिंक इन्वेस्ट भी किया है ऑयल फील्ड्स में। अभी देखो अमेरिका में वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर इज कंपनी कॉल्ड सिटको। उनकी काफी रिटेलिंग में है और वो वेनेजुएला की कंपनी है। उन्होंने ब्लॉक कर दिया तो अभी ऑयल सप्लाई कम होगी तो प्राइस तो ज्यादा बढ़ेगी तो इट विल अफेक्ट इंटरनेशनली।
अमरीका राष्ट्रपति मादुरो को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इस कोशिश में उसे ब्रिटेन, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, ब्राजील और कनाडा जैसे देशों का समर्थन मिल रहा है। यूरोपियन यूनियन भी वेनेजुएला में नए सिरे से चुनाव की मांग कर रहा है। लेकिन राष्ट्रपति मादुरो भी अकेले नहीं हैं। रूस, चीन, इराक और तुर्की उनके समर्थन में आगे आए हैं। ऐसे में लगता नहीं कि वेनेजुएला में सत्ता की लड़ाई सिर्फ दो नेताओं की लड़ाई है।
मेरे ख्याल में ये रशिया और चाइना की इन्वॉल्वमेंट अब काफी है वेनेजुएला में। कुछ महीने पहले रूस ने अपने बॉम्बर्स वहां भेजे थे वेनेजुएला, तब अमेरिका ने काफी प्रोटेस्ट किया था। और चीन के साथ संबंध काफी गहरा है, इसलिए अमेरिका ने शायद ये स्टेप लिया है। और प्रेसिडेंट ट्रंप की पॉलिसी लैटिन अमेरिका की तरफ अच्छी नहीं है। आपने देखा है वो मेक्सिको के साथ वॉल बनाने के लिए सारा गवर्नमेंट शटडाउन कर दिया इतने दिन। अभी यूनाइटेड स्टेट्स और चीन के बीच में काफी तनाव है ट्रेड के बारे में, और रशिया के साथ भी काफी तनाव है। और आपने सुना ही होगा कि अमेरिका अभी चाइनीज कंपनी है हुआई, ये बड़ी आईटी कंपनी है, उसको अपने सब एलायंस को बोल रहे हैं इसको ब्लॉक कर दे।
वेनेजुएला के इस संकट पर संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है। पोप ने कहा है कि ऐसा हर संभव कदम उठाना चाहिए जिससे वेनेजुएला के लोगों की बढ़ती तकलीफों को कम किया जा सके। जानकार मानते हैं कि वेनेजुएला का घटनाक्रम ये बताता है कि यदि आपके घर में सब कुछ ठीक नहीं है तो बाहर वाले इसका फायदा उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आर्थिक और सैन्य रूप से कमजोर देशों के साथ विश्व राजनीति में यही होता है। ताकतवर देश अपने से कमजोर देश के मामले में दखल देते हैं और संयुक्त राष्ट्र का चार्टर भी उन्हें रोक नहीं पाता। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं की भूमिका और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन फिलहाल वेनेजुएला के मामले में सच ये है कि सेना जिसके साथ होगी सत्ता उसी का राज तिलक करेगी।
दुनिया जहान की आज की कड़ी आपको कैसी लगी, आपके खतों और ईमेल का हमें इंतजार रहेगा। और अब कार्यक्रम में आपसे विदा लें, उससे पहले मुख्य समाचार एक बार फिर भूमिका राय से।
बीबीसी समाचार। अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर सवाल उठाए हैं कि उसने अपने परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया है। यमन में मौजूदा संयुक्त राष्ट्र के विशेष दल का कहना है कि होदेदाह में लागू हुआ युद्ध विराम अभी भी जारी है, हालांकि इस बीच कई बार गोलीबारी की घटनाएं देखने को मिली हैं। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने साफ किया है कि वे देश में दोबारा राष्ट्रपति चुनाव नहीं होने देंगे। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी ने बताया है कि पिछले साल भूमध्य सागर से यूरोप में प्रवेश करने की कोशिश करने वाले शरणार्थियों में से औसतन 6 लोगों की मौत प्रतिदिन हुई थी। संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञ ने कहा है कि बीते शुक्रवार को ब्राजील में एक बांध के टूटने की घटना की जांच की जाएगी। दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के एक करीबी शख्स किम क्योंग सू को 2 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में आज इतना ही। कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला रवि शंकर कुमार ने। अगला प्रसारण नमस्कार भारत सवेरे 6:30 बजे। फिलहाल मानसी दास समेत पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।